नमस्कार, मेरे साथ हैं आज डॉक्टर राजेश महेश्वरी। डॉक्टर राजेश महेश्वरी एक पीडियाट्रिशियन है और उनकी स्पेशलिटीज जो है न्यू बॉर्न बेबीज में है। डॉक्टर महेश्वरी सिडनी के वेस्टमीड हॉस्पिटल में काम करते हैं। आज वो हमें जानकारी देंगे उनकी और उनकी टीम द्वारा किए गए एक रिसर्च के बारे में। डॉक्टर राजेश, आपका SBS हिंदी पर स्वागत है।
नमस्ते साहिल, थैंक यू।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपने और आपकी टीम ने जॉन्डिस के ऊपर कुछ रिसर्च किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
साहिल, जैसे आपने बताया, मैं वेस्टमीड हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में करीब 5 से 5.5 हजार बच्चे जन्म लेते हैं हर साल, और जॉन्डिस न्यूबॉर्न बेबीज में काफी कॉमन प्रॉब्लम है। करीब विजिबल जॉन्डिस, जैसे आंखों में पीलापन दिखना, वो करीब 70-75% बच्चों में देखने को मिल जाता है। और ट्रेडिशनली जॉन्डिस का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में किया जाता है, जिससे बच्चों को फोटोथेरेपी या लाइट ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइट बच्चों के ऊपर लगा के। हमारे हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से एक मिडवाइफरी एट होम सर्विस है, जहाँ की बच्चे का जब इनिशियल डिस्चार्ज हो जाता है तो मिडवाइफ घर पे जाके बच्चों को पहले हफ्ते 10 दिन मॉनिटर करते हैं। और वन ऑफ द इश्यूज जिसको मॉनिटर करने की जरूरत होती है वो जॉन्डिस ही है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल से जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हैं 1-2 दिन में ही। और जॉन्डिस का जो पीक आता है बच्चों में वो जनरली 4थे 5वें 6ठे दिन ऐसे आ सकता है। तो हमने ये प्रोग्राम के साथ हमारे हॉस्पिटल में जॉन्डिस कई केसेस में घर पे भी मैनेज किया जाता है बाय द मिडवाइव्स, जिसमें पीडियाट्रिशियन के साथ कंसल्टेशन होता है, लेकिन बच्चा घर पे ही रहता है, फोटोथेरेपी उसको घर पे ही मिलता है। तो हमने ये रिसर्च एक इसलिए किया, ये पता लगाने के लिए कि ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कितनी सेफ है, और इससे क्या फायदे मिल रहे हैं और क्या इसमें कोई नुकसान है। तो हमने एक वर्ष 2019 का डाटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चों को हमने हॉस्पिटल में फोटोथेरेपी दिया, कितनों को घर पे फोटोथेरेपी दिया, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ क्या। तो यही सब हमने रिसर्च पब्लिश किया।
जी, तो आपके रिसर्च में निकला क्या, आपने क्या देखा?
तो हमने जो रिसर्च में ये पाया कि ये प्रैक्टिस काफी सेफ रही, क्योंकि जॉन्डिस, देखिए, जैसे मैंने बताया, इट्स सच अ कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन कुछ केसेस में सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर जॉन्डिस का लेवल काफी बढ़ जाए तो वो बच्चे के ब्रेन में जा सकता है और परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो हमको ये जो घर पे फोटोथेरेपी करना है, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया चाहिए कि किस जॉन्डिस को हम सेफली घर पे मैनेज कर सकते हैं और कौन हमको हॉस्पिटल में वापस बुला के ट्रीटमेंट करना है या हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करना है। तो हमारा ये जो रिसर्च का मकसद यही था, पता करना कि ये हमने 1 साल में कोई कॉम्प्लिकेशन देखा क्या। तो एक भी ऐसा केस नहीं था जिसमें कोई ब्रेन को इंजरी हुआ, सिर्फ एक केस था। और जॉन्डिस में क्या होता है, नॉर्मल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो फोटोथेरेपी होता है, सीवियर जॉन्डिस जब हो जाता है तो एक प्रोसीजर होता है ब्लड एक्सचेंज करना, जिसमें बच्चे को एडमिट करके इंटेंसिव केयर में बच्चे का ब्लड वॉल्यूम चेंज करके डोनर ब्लड दिया जाता है। तो हमको ये रिसर्च में पता लगा कि एक भी ऐसा केस नहीं था जिसमें हमको ये ब्लड एक्सचेंज का प्रोसीजर करना पड़ा, एक भी कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसको कोई ब्रेन डैमेज हुआ। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे अगर बच्चा घर पे उनके साथ रहेगा, और बिकॉज हॉस्पिटल के ऑक्यूपेंसी कम रहा तो कॉस्ट सेविंग भी था ही इस उसमें। करीब हमने जो एस्टिमेट किया कि कई बच्चों में अगर हम उनको वापस बुलाते तो $1,000 पर डे का एक्स्ट्रा लगता हेल्थ सर्विस को। सो फॉर स्टेट हेल्थ सर्विस ऑल्सो इट्स अ यूजफुल ऑब्जेक्टिव।
जी, तो इससे क्या हुआ कि सरकार ने जो हमें मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू, जैसे कि वेस्टमीड हॉस्पिटल है, तो उसने भी उनको भी सरकार को भी फायदा है कि वो भी अपनी कॉस्ट बचा रहे हैं। मिडवाइफ आपके घर जाती है, आपको वहीं पे फोटोथेरेपी देती है, तो इससे कन्वीनियंस हो गई माँ बाप के लिए भी, उनको अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो आपको बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे हर तरीके के पेशेंट आते हैं। तो एक तो ये सेफ हो गया, माँ बाप के लिए हैसल बच गया, बच्चों की थोड़ी और सुरक्षा हो गई, और इससे हॉस्पिटल का भी खर्चा बच गया। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो गई सभी के लिए।
जी हाँ, विन विन सिचुएशन है, बट जैसे मैंने कहा, इसमें कोई भी हॉस्पिटल जिसमें ऐसा प्रोग्राम अगर नहीं है और वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसमें बड़े सेफ्टी क्राइटेरिया आपको समझने पड़ेंगे और इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, कुछ जॉन्डिस, जैसे कि अगर कोई प्रीमेच्योर बच्चे में जॉन्डिस हो रहा है, या कोई ब्लड ग्रुप का इशू है, मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप है और बच्चे का वो ग्रुप नहीं है, तो उस केस में जॉन्डिस सडनली क्वाइट शूट कर सकता है, काफी तेजी से बढ़ सकता है और ब्रेन को प्रॉब्लम कर सकता है। तो वो जॉन्डिस सेफ नहीं है घर में ट्रीट करने के लिए, बट अपना नॉर्मल जो चल रहा है, तो हम जो ये कई रिस्क फैक्टर एनालिसिस करते हैं इस डिसीजन मेकिंग में, लेवल कितनी एज पे कितना है ये देखना पड़ता है, क्योंकि शुरू के 4-5 दिन लेवल बढ़ता है, तो वो नेचुरल हिस्ट्री क्या है जॉन्डिस की वो पता होनी चाहिए। और हम बच्चे की एज के, और एज भी दिनों में नहीं घंटों में एज निकाल के लेवल को प्लॉट करते हैं चार्ट में, और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। और बच्चे का वजन कैसा चल रहा है, बहुत ज्यादा लूज तो नहीं हो रहा है, वो इसीलिए जो मिडवाइव्स हैं वो फिर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके डिसाइड करते हैं कि अच्छा अभी इसको घर पे रख सकते हैं या वापस हॉस्पिटल में लाके ट्रीटमेंट देने की जरूरत है।
जी डॉक्टर साहब, तो क्या ये प्रोग्राम सिर्फ वेस्टमीड अस्पताल में ही अवेलेबल है या ये थ्रू आउट सिडनी, न्यू साउथ वेल्स या ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है?
ये हर हॉस्पिटल में नहीं है, कुछ हॉस्पिटलों में, सिडनी में थोड़ा अवेलेबल है, बट पेरिफेरल एरियाज में, रूरल एरियाज में ऑब्वियसली नहीं अवेलेबल है। और इसीलिए हम हाईलाइट करना चाहते थे कि सारे सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया जाए, तो कॉस्ट सेविंग भी है और फैमिलीज के लिए भी ये ठीक है।
जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आता है कि जो भारतीय मूल के बच्चे होते हैं, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि इंडिया में जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो ये एक आम धारणा बन गई है कि उसको जॉन्डिस तो होगा ही। तो क्या ये सेम चीज हम, जो हमारे भारतीय मूल के बच्चे जब यहाँ पैदा होते हैं तो उनमें भी देखी जाती है? क्या ये हेरिडिटरी होता है कि वहां पे हुआ था बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, तो हमको होगा, या कोई कोरिलेशन है इन चीजों का?
नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, जॉन्डिस न्यूबॉर्न बेबीज में काफी कॉमन है, और करीब 2/3 3/4 बच्चों में दिख ही जाता है आंखों में पीलापन। थोड़ा स्किन कलर का भी फर्क पड़ता है, जो जिनका व्हाइट स्किन होता है उनमें थोड़ा इजीली पता लगता है, जिनका डार्क स्किन होता है थोड़ा मुश्किल से पता लगता है, लेकिन प्रॉब्लम काफी कॉमन है। और ये इसलिए है क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका लिवर थोड़ा इमेच्योर होता है, लिवर को अपना काम पकड़ने में थोड़ा 7-10 दिन लग जाता है, और अगर कोई बच्चा समय से थोड़ा सा जल्दी हो गया तो उसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें कुछ हेरिडिटरी है, ये तो लिवर की कुछ रेयर केसेस में हेरिडिटरी हो सकता है, बट इन जनरल इट इज नॉट।
ये मतलब इसमें ये कहना
तो
ठीक होगा कि ये किसी को भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भारतीय मूल के हैं या साउथ एशियन
जी हाँ,
मूल के हैं या आप ऑस्ट्रेलियन हैं। तो ये एक कॉमन बीमारी है जो किसी को कहीं भी हो सकती है। तो एक और बात डॉक्टर साहब, जो हमने अक्सर सुनी है खासकर ऑस्ट्रेलिया में, कि यहाँ पे जब जॉन्डिस हो जाता है तो आपको, तो बच्चे को अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज नहीं करते हैं। इंडिया में तो जैसे जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ पे तो डिस्चार्ज नहीं करते हैं। इससे काफी परेशानी आती है माँ बाप को और वो घबरा भी जाते हैं, और डॉक्टर्स को भी शायद इतनी जानकारी नहीं है कि वो छुट्टी कर सकते हैं बच्चे की।
देखिए, हर केस का इवेल्युएशन, रिस्क असेसमेंट अलग होता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि वो लेवल कितने घंटे की एज पे कितना लेवल है, जो चार्ट में हम प्लॉट कर रहे हैं वो जो लो रिस्क जोन में आ रहा है या हाई रिस्क जोन में आ रहा है, मदर का ग्रुप क्या है, बच्चे का ग्रुप क्या है, और बच्चे का वजन कैसा चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे पैदा होते हैं तो पहले 3-4-5 दिन में बच्चों का 5-7-8% वजन थोड़ा कम होता है, लेकिन जिन बच्चों का अगर ज्यादा इससे कम होने लग जाए तो उनका जॉन्डिस ज्यादा शूट हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि ठीक है, लेवल रिड्यूस हो रहा है, हम सेफली घर पे मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डिसीजन मेकिंग नहीं है, और आई थिंक मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि पेरेंट्स को जो भी एडवाइस मेडिकल टीम दे रही है उसको फॉलो करना चाहिए।
कुछ डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चे को जो है सूरज को दिखाएं, सूरज की किरणों से जॉन्डिस खत्म हो जाता है। तो ये कितना सेफ है और क्या इसको करना भी चाहिए?
जी साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से ना तो ये सेफ है जॉन्डिस ट्रीटमेंट के लिए और ना ही इफेक्टिव है, क्योंकि जो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिल रहा है वो इफेक्टिवनेस नहीं देता है जो कि फोटोथेरेपी की लाइट्स देती हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और दूसरा हम ऑस्ट्रेलियन सन काफी हार्श भी है, हम ये भी नहीं चाहते कि ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन को मिले, तो हमारे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो बच्चे को प्रॉपर फोटोथेरेपी चाहिए जो जो कि आइदर हॉस्पिटल या घर पे प्रोवाइड की जा सकती है अगर लेवल नॉट बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है तो, लेकिन ये सन एक्सपोजर को हम रेकमेंड नहीं करते।
जी, माँ बाप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए उनके बच्चे को जब जॉन्डिस पाया जाता है तो काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि सब एक नया एक्सपीरियंस होता है माँ बाप के लिए भी और पूरे फैमिली के लिए भी। तो इस ऐसी सिचुएशन में माँ बाप को क्या करना चाहिए?
सो एक तो ये जानकारी कि पैदा होने वाले 5 बच्चों में 3 या 4 को जॉन्डिस हो जाता है, अगर ये जानकारी सबको हो तो पहले ही थोड़ी शांति मिल जाएगी कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है। और दूसरा फीडिंग पे ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे को जैसे हर 3-4 घंटे में दूध पिलाने का बोलते हैं तो बच्चा अच्छे से फीडिंग ले, उसका वजन नॉर्मल लिमिट में गिरे, बहुत ज्यादा नहीं गिरे, तो वो भी हेल्प करता है कि जॉन्डिस बहुत शूट नहीं करे। और बाकी जो मेडिकल जैसे हम कहते हैं रेगुलर एंटीनेटल केयर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेगुलर विजिट्स हों, जो भी ब्लड टेस्ट होने चाहिए मदर के वो सारे वो फॉलो करें एडवाइस, और उससे थोड़ा रिस्क असेसमेंट रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन पता लग जाता है कि आगे बच्चे को जॉन्डिस का रिस्क होगा या कितना होगा, तो वो सब फॉलो करें। और जैसे आप बच्चे की बर्थ के बाद जैसा भी जैसे मैंने बताया मेडिकल टीम की रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करें, बट घर पे वो बच्चे की फीडिंग सही चल रही है, बच्चे को रेगुलर यूरिन हो रहा है, बच्चे को रेगुलर स्टूल पास हो रहा है, इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं।
तो क्या ऐसा भी होता है कि जब बच्चे को फीड किया जाता है तो जो उनके लीवर में जिस वजह से ये जॉन्डिस होता है वो सब बाहर निकल जाता है थ्रू स्टूल एंड थ्रू यूरिन?
फीडिंग का हेल्प ये होता है कि उससे यस आप जो बोल रहे हो इन सम वेज यस दैट इज करेक्ट, कि जो जॉन्डिस का पिगमेंट होता है बिलीरुबिन बोलते हैं जिसको, जिसकी वजह से वो येलो कलर आता है, वो फिर अल्टीमेटली लिवर से उसको लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है और फिर वो लिवर के थ्रू आंतों में एक्सक्रीट होके स्टूल में निकल जाता है। और
जी
अगर हम फीडिंग नहीं करेंगे या फीडिंग बच्चा कम लेगा तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी।
जी तो अक्सर कितने दिन में ये जॉन्डिस की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है?
जनरली जो बच्चे फुल टर्म पैदा होते हैं मतलब 37-38 हफ्ते के बाद पैदा होते हैं उनमें 2 हफ्ते में ये सब खत्म हो जाना चाहिए, और जो बच्चा थोड़ा जल्दी हो जाए 35-36 हफ्ते पे तो उनमें 3 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए।
अगर नहीं होता है तो आपको तुरंत अपने जीपी या अपने हेल्थ प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना चाहिए।
जी हाँ, और एक और चीज जो माँ बाप को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर जॉन्डिस के साथ अगर वो देखते हैं कि बच्चे का जो स्टूल है वो पीला या हरा नहीं है, एकदम व्हाइटिश जैसा स्टूल है, तो वो एक डेंजर सिग्नल है, उस केस में उनको जीपी के पास तुरंत दिखाना चाहिए।
जी, और कोई सलाह जो आप हमारे अभिभावकों को देना चाहें?
जॉन्डिस के बारे में तो यही है, फीडिंग का ध्यान रखना, और बच्चे का जैसे मेरे ख्याल से सिडनी में तो हर जगह मिडवाइफरी एट होम एक सर्विस है जहाँ मिडवाइफ घर पे आके विजिट करती हैं, तो वो बच्चे के वजन भी नापते हैं, तो बस वो एक जानकारी होनी चाहिए कि वजन का क्या पैटर्न होता है, और स्टूल के बारे में जो मैंने बताया वो एक कंडीशन है लिवर की, है तो रेयर लेकिन अगर टाइमली पकड़ ली जाए तो उसका इलाज थोड़ा अच्छे से हो सकता है। तो अगर स्टूल में व्हाइटिश कलर का स्टूल लग रहा है, बच्चा मान लीजिए हफ्ते का हो गया 10 दिन का हो गया, तो तुरंत उसको दिखाना चाहिए।
कोई ऐसे तरीके भी होते हैं कि जिससे कोई एक एक्सपेक्टिंग मदर जिसको उस उन तरीकों को अपनाए जिससे कि बच्चे में ये जॉन्डिस ना हो?
देखिए तरीका ऐसा सच तो नहीं है, बट अगर उनका जैसे रेगुलर चेकअप और स्क्रीनिंग होता है तो जैसे मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उस केस में अगर अंदर बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो बच्चे को थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, तो उस केस में अगर वो रेगुलर चेकअप करा रही हैं तो उनका रेगुलर बच्चे का अल्ट्रासाउंड वो करके देख सकते हैं डॉक्टर्स के बच्चे को अंदर अनीमिया जैसे ब्लड की कमी हो रही है क्या, और कुछ ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है मदर को कि जिससे आने वाले बच्चे को जॉन्डिस का रिस्क कम हो।
जी डॉक्टर राजेश, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने जीपी से इस नए रिसर्च के बारे में कंसल्टेशन करेंगे और जो भी उनको उचित सलाह दी जाएगी उसका वो फॉलो करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।